ओम शांति। हम सबके बीच विराजमान आदरणीय दैवी भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वेर भाई जी को हम और आप सबकी तरफ से आदर पूर्वक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता निर्वेद जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी है। पंजाब में जन्मे आदरणीय भ्राता निर्वेद जी 9 वर्ष तक भारतीय नेवी में सेवारत रहे, जहां उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। लेकिन सत्य की खोज में इस कुमार ने शीघ्र ही ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाकर अपनी सत्य की खोज जारी रखी। वास्तव में भ्राता निर्वेद भाई जी आध्यात्मिक रुचि बचपन से ही अति तीव्र थी, क्योंकि तभी से इन्होंने स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ इत्यादि की शिक्षाएं अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ कर दी थी। 1959 में वे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, जहां संस्था के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की प्रेरणाओं ने उन्हें विश्व आध्यात्मिक सेवा में अग्रसर किया। 1963 तक पहुंचते भ्राता जी ने अपने जीवन का भविष्य स्वयं निर्धारित कर लिया था। जिस वर्ष उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में स्वयं को संस्था की सेवाओं में समर्पित कर दिया, प्रारंभ से ही राजयोगी भ्राता निर्वेद भाई जी ने भारत में तथा विदेशों में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक सेवाओं के बहुत महत्वपूर्ण कर्णधार रहे हैं। संस्था की बहुत सी सेवाओं में भ्राता जी का चिंतन तथा योगदान आधार रहा। उनके इस निरंतर योगदान से संस्था के बहुत से सेमिनार, भाषण, महासम्मेलन, शिविर, प्रदर्शनी इत्यादि से अनंत आत्मों के चिंतन तथा जीवन प्रणाली में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। आदरणीय भ्राता साहब का वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल प्रदर्शनी तथा स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का स्थापना तथा संस्था से संबंधित बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं में अभूतपूर्व योगदान रहा है। वर्ष 1982 में यूएनओ हेडक्वार्टर पर आयोजित विश्व निशस्त्रीकरण के दूसरे सत्र में आदरणीय भ्राता निर्वेद भाई जी आधिकारिक रूप से संस्था के प्रतिनिधि थे, जहां उन्होंने यूएनओ के समकालीन सेक्रेटरी जनरल जेवियर परेस डी क्यूलर से तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मिलकर विश्व शांति पर विशेष परिचर्चाएं की। अमेरिका के अतिरिक्त आदरणीय राजयोगी निर्वेद भाई जी विश्व के लगभग सभी देशों में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार व प्रसार के बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि रहे हैं। तो आइए अभी हम सब सुनेंगे कर्मयोग के बाद भी परिस्थापन के अनुभव करने का राज भ्राता निर्वेद जी से। ओम शांति।
ओम शांति। सीजन का अव्यक्त बाप दादा से मिलन का ये दूसरा टर्म है। इस बार विशेष रूप से हमारे कर्नाटक जोन के भाई बहने अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं, सेवा के हिसाब से भी जिम्मेदारी है और बाबा से मिलन के लिए भी अधिक संख्या कर्नाटक जोन की है और उसके साथ में सब तरफ के भाई बहन अभी विदेश के भाई बहन यहां नहीं होंगे, वो ज्ञान सरोवर में है, शाम को यहां सब होंगे। तो दादी जी की तरफ से बाप दादा की तरफ से मधुबन निवासियों की तरफ से सभी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ये विशेष समागम कहो, संगठन कहो, कुंभ मेला को, सारे विश्व इतिहास में अद्भुत है। इस तरह का मिलन, इस तरह का समागम, इस तरह का व्यक्त मिलन न पहले कभी हुआ न होगा। कल्प में ये थोड़ा सा संगम का समय है जब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं। और उनको पहचानने वाले पहले पहले निमित्त इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार मुहूर्त हम सब के परम प्रिय कहें साकार ब्रह्मा बाबा इस समय कहेंगे अव्यक्त बाप दादा वो निमित्त बने एक विचित्र नया संगठन बना, नई शुरुआत हुई। भारतीय पद्धति के अनुसार, प्रथा के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक संगठन में प्रारंभ में हमेशा ओम की ध्वनि से शुरुआत होती है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत में आप सबको पता है ओम का उच्चारण होने के कारण, क्योंकि ओम उसके अर्थ तो बहुत सारे निकालते हैं लोग, लेकिन एक परमात्मा के स्वरूप की मान्यता ओम के रूप में है। इसलिए बहुत प्यार से ओम की ध्वनि करते थे। तो विश्वविद्यालय का नाम ओम मंडली पड़ गया था। वो ओम मंडली आज विश्वविख्यात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में विश्व के कोने कोने तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या सेवाएं दे रहे हैं? जिसको ऋषि मुनि तपस्वी योगी प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते रहे, हठ करते रहे, वह जब स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपना यथार्थ परिचय देते हैं, परिचय देने के बाद हम सब आत्माओं को एक नया दिव्य जन्म देते हैं। जो हम लौकिक नाम रूप उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, उसको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा परिवर्तित किया कि जो देखने में आते हैं स्थूल रूप से, ये आपका शरीर है, ये आपका माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, उसको भिन्न भिन्न शब्दों में लोगों ने कहा एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाने वाला कौन? हर शरीर के अंदर विराजमान इंडिविजुअल, अपनी अपनी आत्मा है। जो निराकार भी है, साकार में होते हुए जीवात्मा कहलाती है, और सर्व आत्माओं का अनादि पिता, आत्माएं भी अनादि हैं, अविनाशी हैं, तो सर्व आत्माओं का अनादि पिता परम पिता परमात्मा शिव है। साउथ इंडिया में खास भजन के रूप में उनकी स्तुति जब करते हैं तो उसको निराकार कहते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब हम सब आत्माओं को जागृत करने के लिए अपना यथार्थ परिचय दिया, हम आत्माओं का यथार्थ परिचय हमें कराया, उससे एक नई सोच, नया दृष्टिकोण मिला, जीवन का एक नया लक्ष्य, और उस लक्ष्य के फलस्वरूप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया, खान पान में परिवर्तन आ गया, समझ आने लगी कि वास्तव में हम सब आत्माएं अनादि काल में आत्मा है, आदि काल में जीवात्मा के रूप में हम सब देवी देवता है। बहुत से साइंटिस्ट कई बार ये आर्गुमेंट करते हैं, मनुष्य पहले क्या था, धीरे धीरे वो ऐसा अपने में उन्नति करते करते ऐसा बना है। लेकिन कहा जाता है मनुष्य के मन में कुछ और, भगवान के मन में कुछ और। भगवान ने कहो, शिव बाबा ने कहो, आकर के जब परिचय दिया तो कहा नहीं, आप पहले जानवर नहीं थे, आप देवता थे, फिर से देवता बनने का लक्ष्य दिया। जब दैवी गुण थे जीवन में तो देवता थे, अब नहीं है दैवी गुण तो साधारण मनुष्य है। जब देवता थे तो इच्छा मात्रम अविद्या थे, जब देवता थे तो दैवी गुण संपन्न थे। आज की मुरली अनुसार भी उस समय सदा स्वस्थ थे, सदा तंदुरुस्त थे, धन दाने संपन्न थे, जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे थे। और आज उसकी भेंट में सभी जानते हैं मनुष्य कितनी डिफिकल्टी से पास हो रहा है। तो बाबा ने जब से ये ज्ञान दिया उसमें हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में ही बाबा का परिचय मिला। जैसे बहन ने सुनाया आपको परिचय में, जैसे ही परिचय मिला और चार दिन के बाद बाबा की याद में थोड़ा टाइम मन लगाकर बैठे, उस समय इतना सुंदर अनुभव हुआ, मन में पक्का हो गया कि सचमुच हम जहां आए हैं, हालांकि बहुत छोटा सा स्थान था बॉम्बे के अंदर, कि ये सचमुच भगवान का स्थान है और हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनसे अपना अधिकार लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और हम अपना अधिकार लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये 55 साल पहले की कहानी है। तब से साकार बाबा के साथ संपर्क हुआ पत्र व्यवहार के द्वारा। अब आप सोचिए, बाबा को पत्र लिखें, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा, और बाबा का उत्तर आए, अगर आप भी लिखें और आपको भी उत्तर आए तो आपको कैसा लगेगा, मन कितना खुश होगा। पंद्रह दिन ही हुए थे हमें ज्ञान में जब से ये पत्र व्यवहार शुरू हुआ था। एक बात जरूर कहूंगा कि इस ज्ञान मार्ग में कुछ जैसे लौकिक में बचपन होता है, फिर युवा अवस्था में आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कारोबार में लगते हैं और वहां तो फिर क्या कहें उसको, ऐसा समय भी आता है जो रिटायर होना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में खासकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया है, उनके लिए रिटायरमेंट एज है नहीं। देख रहे हैं आप दादी जानकी जी को, 98 की एज में वो अपने आप को रिटायर नहीं करना चाहती हैं। कितना भी कोई कहे दादी अभी आप बस बहुत सेवा कर ली, नहीं करेंगी। और इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हम सदा एक्टिव रह सकते हैं। 63 जन्म का द्वापर कलयुग का कोई रहा सहा हिसाब किताब अगर कोई है, वो भी चुकतु होता है, साथ साथ योग बल के द्वारा भी चुकतु होता है, थोड़ा सहन शक्ति के द्वारा भी चुकतु होता है, कुछ डॉक्टरों के हिसाब किताब का भी चुकतु होता है। लेकिन हर ब्रह्मा कुमार हर ब्रह्मा कुमारी हर भाई हर बहन को आनंद किस में आता है? आनंद आता ही है सवेरे सवेरे बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद में बैठने में, और उसके बाद बाबा के महावाक्य सुनने में पढ़ने में। संजीवनी बूटी के रूप में बाबा की याद और मुरली, ये दो चीज प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं। और वो जब से हमने शुरू किया 55 साल पहले आज दिन तक उसके बल से चल रहे। तो बचपन में बाबा ने जो पालना दी उसका वर्णन करूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा सा सोचने लगेंगे, काश के हमें भी ये पालना मिलती, हमको क्यों नहीं मिली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनता हूं कि जब हम सुनाते हैं तो भाई बहने अपने आप सुनते सुनते उस समय में पहुंच जाते हैं जैसे कि वो स्वयं साकार बाबा के सामने शिव बाबा के दृष्टि के द्वारा अपने आप को भरपूर कर रहे हों। क्योंकि मुझे याद आता है हम जब भी बाबा के सामने बैठते थे, मम्मा के सामने बैठते थे या दादी के सामने बैठते थे, गुलजार दादी के सामने बैठते थे, किसी के भी सामने, बड़ी दादियों के सामने, दीदी मनमोहिनी के सामने, दृष्टि मिलते ही इतना नशा चढ़ जाता था। कारण कि अपने निज स्वरूप में हम आत्मा स्थित हो जाते थे, और हम आत्मों का निज स्वरूप जो है वो है ही अति इंद्रिय सुख स्वरूप, क्योंकि उसमें सर्व गुणों का सर्व शक्तियों का मिश्रण होता है, और उसके फलस्वरूप आत्मा अपने आप में स्वयं ही इतना आनंदित हो जाती है, चेहरा एकदम खिला रहेगा, नैनों में वो खुमारी आ जाती है, और दिल होगी बस बाबा को देखते रहें। गीत भी है ऐसा एक, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, तो एक तो देखते रहें और दूसरा था साकार में इतना तो जरूर था जो आज बड़ा मुश्किल है, दादी आप सबको अपने गले तो नहीं लगा सकती, सिर्फ इशारे में ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, मैं सबको गोद में ले लेती हूँ, लेकिन साकार में थोड़े भाई बहने थे तो बाबा से अच्छी तरह बहुत समीप से दृष्टि लेते लेते बाबा से गले मिलना, बाबा से टोली मुख में लेना, बाबा के साथ नजदीक से रू रुहान करना, बाबा के साथ खेलना। अब आप सुनाइए और क्या क्या सुनेंगे। ब्रह्मा भोजन साथ में बैठ के करना, पिकनिक साथ में बैठ के करना, और फिर रात्रि क्लास के टाइम पर बाबा की उनके अनुभव की बातें सुनना, राजाओं महाराजाओं के साथ की बातें सुनना, सोने से पहले उनके पास बिस्तर पर बाबा लेटे होंगे अपने, हम लोग पास बैठ जाएंगे तो बाबा उस समय की बातें सुना करके ऐसे हम लोगों को अनुभव कराते थे जैसे बाबा के साथ हम भी, जैसे बाबा को वो कहते थे लखीराज, राजा हम नहीं तुम राजा हो, तो हम भी बाबा के साथ ये सुनते क्या फील करेंगे उस समय कि हम भी प्रिंस हैं, प्रिंस हैं, प्रिंस हैं। तो ऐसी बातें जब मैं कभी सोचता हूं कि बाबा ने शुरू में इतना बचपन में ही इतना सुंदर अनुभव करा दिया, इतना सुंदर नशा चढ़ा दिया, और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप फिर कैसे आता है। बाबा ने पहले पालना दी, पालना दे करके बड़ा किया और फिर सेवा में लगाया। हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और कमाऊ पुट बन जाएं, कमाऊ पुट समझते हैं कमाने वाले पुत्र बन जाएं। तो जितने भी भाई बहने हैं उसमें भी खास अधिकार ज्यादा बहनों को मिला शुरू से लेकर के। थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में बताया था कि देखो बाबा ने भी शुरू में ट्रस्ट बनाया तो बच्चियों को दिया, जिसमें तीन माताएं थी पांच कुमारियां थी, उनके हवाले सब कुछ किया था। तो आज से लेकर के बाबा ने बहनों को आगे रखा, क्यों, उसका बहुत राज है। बाबा खुद सुनाते थे बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती है, सिंसियर होती है और सेवा भाव बहुत बच्चियों में होता है, इसलिए। और उससे ज्यादा तो बाबा ने फिर थोड़ा सा आध्यात्मिक रीति से, सत्युग में क्या प्रथा है, पहले कौन है, श्री नारायण है या श्री लक्ष्मी है, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, त्रेता में पहले श्री सीता फिर श्री राम, आजकल का क्या रिवाज है, पहले मिस्टर फिर मिसेस, ऐसे है ना, उल्टा कर दिया सारा। तो बाबा ने शुरू से लेकर के इस तरह का माहौल बनाया और पक्का कराया कि इसमें राज क्या है। वो बाद में लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके लिखत में लिखा है, When you change a man, you change one person. When you transform a woman, you change the whole society. सारी संसार को चेंज कर देते हैं जैसे। आज बाबा के ये महावाक्य प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि सारे संसार को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म करने का वो प्रैक्टिकल कार्य इस समय हो रहा है, जिसमें के ब्रह्मा कुमारी बहनों का लीडिंग रोल हमेशा देखने में आता है। और इसके साथ साथ में कुछ बाबा के ऐसी बातें हैं साकार बाबा की जो दिल को छूने वाली है। बहुत क्लियर बाबा ने कई बार मुरली के अंदर सुनाया तो है, पर कभी कभी हम नोट करते कभी नहीं करते। साकार बाबा कभी भी अपने रोल को शिव बाबा के रोल के साथ मिक्स नहीं किया। बाबा बाबा है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाबा ब्रह्मा को फिर बाद में बड़ी मां के रूप में भी व्यक्त करते थे। ब्रह्मा मां भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, लेकिन शिव बाबा अनादि अविनाशी पिता है। आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, शिव बाबा अनादि अविनाशी है, और उनका अनादि अविनाशी बाप और बच्चे का रिलेशनशिप है। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जब ये कलयुग के अंत समय परिवर्तन का समय है तो उस समय ब्रह्मा बाबा का पाठ शुरू होता है। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, देखो जैसे आप बच्चे हो, ये ब्रह्मा बाबा भी आपके जैसा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी अपने पांव को हाथ नहीं लगाने देते थे, कभी नहीं लगाने देते थे। बहुत सिंपल लाइफ में थे, कहां तो राजाओं महाराजाओं के साथ कारोबार, बहुत बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए, क्वीन के लिए नेकलेस बना के देना, ये करना, वो सब डायमंड्स का दिया। और जब बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, सच्चे ज्ञान रतन दिए, अविनाशी ज्ञान रतन दिए, तो बाबा ने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, ये सब पत्थर हैं। सच्चे ज्ञान रतन तो बाबा के पास है। ऐसा वैराग आया जो बस, बाबा कहते थे देखो जैसे बिजनेस में था मैं वैसे का वैसे इसमें हूं। मार्किन की कमीज, मलमल की धोती, और पांव में जब से यज्ञ शुरू हुआ तो लकड़ी की खड़ाम पहनना शुरू कर दिया। इतनी सिंपल लाइफ। और जब कभी किसी से मिलना हो, चाहे कोई गवर्नर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई एम्बेसडर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, जैसे ये स्टेज पर सफेद चादर बिछी हुई है ना, ऐसे बाबा सफेद चादर बिछवाते थे। उनके आप ऊपर भी जाएंगे रूम को देखेंगे, पर्दे भी सफेद, नॉर्मली तो सब डार्क करना चाहते हैं नींद आने समय ऐसा हो, लेकिन बाबा के लक्ष्य ही कुछ और थे। सफेद पर्दे, कभी दरवाजा बंद नहीं करने का, नीचे बैठने के लिए गद्दी बनाई हुई, गद्दी भी सफेद, कोई और तरह का आसन नहीं, उसके सामने नीचे दरी बिछा के उसके ऊपर भी चादर सफेद, स्वच्छता की निशानी, प्यूरिटी की निशानी, अंदर बाहर प्योर एकदम होना चाहिए। और बाबा की सदा जागती ज्योत प्रैक्टिकल देखी। कभी भी हम सोचेंगे बाबा इस समय आराम में होंगे, फिर भी दिल होती थी जाके थोड़ा देखें तो सही, थोड़ा सा पर्दा ऐसे करेंगे तो बाबा लेटे तो ऐसे होंगे ऐसे करके, लेकिन बोलेंगे आओ बच्चे, ये नहीं कोई कभी कहेंगे कौन है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, आओ बच्चे, तो ऐसी ऐसी बातें जो बाबा की, हर बच्चे से इतना प्यार, जो भी साकार बाबा से मिलने वाली आत्माएं, आज भी कोई बहने मिली, वो उनके दिल पे जो छाप लगी हुई है, हर एक बच्चा यही कहेगा जितना बाबा ने मुझे प्यार दिया और किसी को नहीं दिया। तो हम बच्चों को क्या करना है? तो मैं इस बात को लेकर के बाबा को अपना रोल मॉडल समझ के अपने सामने रखता हूं। पुरुषार्थ करता हूं, कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, जैसे बाबा ने सबके साथ ऐसा निजी संबंध रखा, इतना प्यार का संबंध, कभी ये नहीं पूछा, पहले तो कभी मिले नहीं, ऐसा नहीं कहा। बाबा हमेशा कहते थे ये कलब पहले वाले बच्चे फिर से मिल रहे हैं। तो वही अगर अपने दिल में हमारे ये अगर बाबा पक्का कराता था बच्चे, अभी अव्यक्त बाबा भी तो यही कराते हैं गुलजार दादी के द्वारा, बच्चे कलब के बाद मिले हो आपस में, सोचो तो सही, भले आप सतयुग से लेकर के साथ में थे पर एक दो को पहचानते नहीं थे, अभी कलब के बाद फिर से इसी स्वरूप में मिले हो और सभी बाबा के बच्चे हो, तो एक दोस्त से कितना उस भावना से, उस ऊंचाई से एक दो की इज्जत करते हुए, एक दो के प्रति ऐसे भाव रख करके जब दृष्टि मिलाएंगे, मुस्कुराते रहेंगे, चाहे साइलेंस में रहें चाहे बात करें, लेकिन खुशी जरूर होगी, मन में खुशी होगी। और एक बड़ी विशेष बात है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की सारे संसार के अंदर पहचाने जाते हैं, बैज से सिर्फ नहीं, किससे पहचाने जाते हैं? चेहरे से, नैनों से। क्योंकि ऐसे मुस्कुराते चेहरे कहीं नजर नहीं आते। तो दूसरा बाबा से एक विशेष वरदान जो मिला शुरू से, वो था कि सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करके आधा पौना घंटा बाबा की याद में जरूर बैठना है और उसमें लक्ष्य रखना है कि आज बाबा से कुछ नया अनुभव करना है, आज बाबा से कुछ नई शक्ति भरनी है, आज बाबा से कोई नया वरदान प्राप्त करना है। इस लक्ष्य से जब बैठेंगे हर बार आपको कुछ नवीनता का अनुभव होगा और उस नवीनता के अनुभव में आपको बाबा की समीपता का सबसे ज्यादा अनुभव होगा। और जितना बाबा की समीपता का अनुभव होगा आपको नींद नहीं आएगी, मेडिटेशन के टाइम पर झटका नहीं आएगा कभी, क्योंकि अंदर की तीसरी आंख जो है ना, तीसरा नेत्र, वो खुला हुआ है और उसके साथ में फिर बाबा के महावाक्य जो हैं, मुरली जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ेंगे योग करने के बाद, तुरंत बाद, तो वो आपके हृदय पटल पर छप जाएगी, आपको सारा दिन उसकी सहज स्मृति आती रहेगी। दोबारा मुरली सुनेंगे क्लास में और परपक्ता हो जाएगी। लेकिन आप इस तरह से करके देखिए, ये बाबा ने शुरू में बहुत अच्छी तरह से पक्का किया था। सवेरे का याद का कभी मिस नहीं करना और मुरली कभी मिस नहीं करना। पचपन साल से इतना आनंद आया है उसका। मेरे से अभी ये टॉपिक जो दी हुई है उसमें खास है मुस्कुराते हुए चेहरे का राज क्या है, ये राज है और कुछ नहीं। आप करके देखो, आप भी सदा मुस्कुराते हैं। क्यों? जब मुरली में हम रोज पढ़ते हैं बाबा के संबंध से, टीचर के संबंध से, सतगुरु के संबंध से, उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाने का एक लक्ष्य रखते हैं, तो हर एक भाई या हर एक बहन के प्रति भावना क्या रहेगी? ये सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं तो मेरे क्या हुए? बाबा के बच्चे हैं तो मेरे क्या हुए? मेरी बहनें, मेरे भाई, अपनेपन की भावना रहेगी। जहां अपनापन होगा वहां मन खुश होता है। अपनों से कहा जाता ना, अपनों से मिलने में खुशी होती है, और उसमें भी जो सुख देने वाली आत्माएं हैं वो मिलती हैं तो और ज्यादा खुशी होती है। अभी दो तीन दिन पहले मेरे पास भाई जी आए हैं, जज साहब हमारे, तो बैठे थे तो मन में बड़ी खुशी हो रही थी। बाबा को याद करते मन में यही आता था, बाबा के देखो इतने चुने हुए बाबा के बच्चे लास्ट लाइफ में भी, इस जन्म में, ये इसको 84वां जन्म हम मानते हैं। मानते हैं सभी आप 84वां जन्म है? हाथ हिलाएं। तो 84 जन्म में भी इतना ऊंचा बाबा ने पद दिया हुआ है। इससे पहले 84 जन्म शुरुआत जो है वो तो डबल ताजधारी के रूप में आपकी शुरुआत हुई है। ऐसी नशे की बातें बाबा की जब सोचते हैं तो मन कभी उदास नहीं होता है। कभी बाबा किसी को थोड़ा सा, खासकर कोई बहन को देखते थे ना, थोड़ा चेहरा उदासी वाला है तो हंसते हंसते पूछ लेते थे साकार बैव, बच्ची क्या बात है, माँ ने शरीर छोड़ा है क्या? मतलब कुछ भी हो, और वो दादी प्रकाशमणि के चेहरे से हम लोग देखते थे। उनको कभी शारीरिक कोई प्रॉब्लम भी होंगी, दर्द भी होगा, तो भी जब पूछेंगे, डॉक्टर पूछेंगे दादी कैसे हैं, ठीक हूं थोड़ा सा दर्द है, ऐसे करके बोलते। तो एक क्या कहें उसको, हमारी जो अप्रोच है लाइफ के प्रति, भावना जो है वो बदल जाती है। वही बात ज्यादा सोचो तो सिर भारी हो जाएगा, और वही बात को लाइटली ले लो तोड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और अभी तो क्या कहते हैं, नथिंग 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 न्यू, कुछ नया नहीं है, फिर भी सब नया है। नथिंग न्यू बट एवरी मोमेंट इज न्यू। अभी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला उसका तो पता नहीं है। याद है आपको नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है? एक मिनट के बाद क्या होने वाला है, या कुछ ख्याल में है आपको? नहीं है। तो जो होना है वो नया होगा, जो हो गया उसको क्या कहते हैं, ड्रामा, हो गया। तो बाबा ने इन बातों को, साकार बाबा ने अपने जीवन में इतना पक्का किया हुआ था। कोई ने शरीर छोड़ा, जब तक शरीर में है उस आत्मा को बहुत प्यार देगा, उसको सकाश देगा, शक्ति देगा, सब करेगा। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, डिटैच्ड, बस इसका पार्ट पूरा हुआ, दूसरा पार्ट बजाएंगे, पहले से और अच्छा बजाएंगे। बहुत शुभ सोचते थे। तो हम आत्माओं को भी, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी, ऐसी शुभ भावना जब सदा मन में रहती है, खुद के लिए भी शुभ भावना रहनी चाहिए, नहीं तो क्या करते हैं, अपने थोड़ी सी कोई तकलीफ हुई तो कहेंगे पता नहीं मेरा क्या, कौन सा कर्म है, किस जन्म का कर्म है जो ये मेरे सामने बात आई। तो बाबा कहता है ये तो बीत जाना है, अभी तो टेम्परेरी आई और गई बस। और सचमुच ऐसे होता है, कोई चीज परमानेंटली आपको कष्ट देने वाली नहीं रहती। लेकिन अपने अंदर जब शुभ भावना होगी तो उस शुभ भावना से सारा परिवर्तन हो जाता है। अपने प्रति भी शुभ भावना रखनी है, दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, फिर देखो क्या चेंज आती है। तो बाबा की ऐसी ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल में देखते थे, क्या बताएं आपको, थोड़ा कोई नटखट भी बच्चे होते थे, ऐसा भी था। तो बाबा कभी उनको नीची नजर से नहीं देखते थे, फिर भी प्यार से देखते थे, दृष्टि देते थे, वही टोली दृष्टि सब, गले भी लगाएंगे, कान में बोल देंगे बच्चे थोड़ा अपना ध्यान रखो बस। तो बाबा की पालना तो इतनी, अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है, हमारे कर्नाटक के भाई बहनों ने 3 दिन से मौन व्रत का अभ्यास कराया सबको। उस बीच में राम श्लोक भाई ने भी, हाँ ताली बजाओ अच्छी तरह से, राम श्लोक भाई ने भी तपस्या कराई उस दिन। वास्तव में क्या है, जब मौन में रहते हैं तो जो व्यर्थ बातें हैं, अननेसेसरी बातें हैं, उनसे डिटैच्ड रहते हैं। तो अपना जो क्वालिटी टाइम है वो बाबा की याद से और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं, और अपने निज स्वरूप का जो अनुभव है वो होना शुरू हो जाता है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो एक अंदर में निश्चय होता है, सचमुच बहनें जो बट्टी के लिए कहती हैं, तपस्या के लिए कहती हैं, मौन के लिए कहती हैं, इसके अंदर बड़ा राज है। ऋषि मुनि मौन रखते थे, क्यों नहीं, उन्होंने भी तो कोई राज को समझ करके ये सब किया है ना। अभी लक्ष्य हमें मिल गया कि मौन रखते हुए मन में किसको देखना है, मन मना भव हो करके शिव बाबा को मन के सामने देखना। तो जितना बाबा को मन के सामने रखेंगे, मन मना भव होंगे, शिव बाबा के समानता के स्वरूप में आते जाएंगे। वो सागर है तो हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे, हर गुण का, हर शक्ति का। और उस बात के लिए बाबा ने, साकार बाबा ने, आप देखेंगे कुछ मुरलियों के अंदर इशारे थे, बच्चे जब आप कम से कम 8 घंटा तपस्या करोगे, 8 घंटा तपस्या करोगे 24 घंटे में, तो कर्मातीत स्टेज आ जाएगी, समय ऐसा है अभी, कर्मातीत स्टेज अपने आप नहीं आती है, उस स्टेज को लाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और दृढ़ संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ भी प्रैक्टिकल चाहिए। तब आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, दो हफ्ते के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, एक महीने के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, फिर नेचुरल हो जाता है। तो अभी सभी क्या करेंगे, अपनी स्थिति को नेचुरल बनाएंगे। नेचुरल, जैसे देवताएं नेचुरल मुस्कुराते रहते हैं, तो सभी भाई बहने नेचुरल बाबा की याद में मन लगा के सदा मुस्कुराते रहेंगे, तो आपकी मुस्कान जो है सारी दुनिया में, सारी दुनिया को क्या बना देगी, फूलों का बगीचा बना देगी। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बैठेंगे याद में, सीधे होके बैठ जाओ, मैं भी सीधा होके बैठता हूं। चलिए, चाहे फूलों के बगीचे में चलो, चाहे सूक्ष्म वतन में चलो, चाहे मूल वतन में चलो, चाहे फिर अपने स्वर्ग लोक में चलो, लेकिन अभी खुशी खुशी चलो। थोड़ा ही टाइम बैठना है, लेकिन इस थोड़े टाइम को, एक एक सेकंड को इतना सुंदर बना के बैठना है जो लगे कि सचमुच बाबा के संग का रंग मुझ आत्मा पर चढ़ा। मन के तीसरे नेत्र से स्वयं को और बाप दादा को साथ साथ देखिए, बहुत समीपता से देखिए। अव्यक्त रूप में बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने खुशी में बिल्कुल लाइट होकर के बैठे। जितना मन खुश होगा उतने हल्के होंगे, उतना लाइट होंगे, जितना लाइट होंगे तो आत्मा उड़ सकेगी। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित, बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में अपने सन्मुख देखते, अपने साथ देखते, बाप दादा के संग के रंग में एकदम लाइट स्वरूप में स्थित। मन भी लाइट, तन भी लाइट का, और स्थान भी लाइट का। पांच तत्वों से पार, स्वयं को भरपूर करते, और सूक्ष्म होते, अपने आत्म स्वरूप में चले जाएं। आत्म स्वरूप स्टार लाइक, तारों की तरह, शिव बाबा के संग परम धाम निवासी अपने गोल्डन रेड लाइट के बीच चमकते हुए डायमंड्स लेकिन रूहानी डायमंड ऐसी लाइट और ऐसी माइट की स्वरूप में जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराए सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का मिश्रण शिव बाबा के संग अपनी चरम सीमा पर अनुभव स्थिति के अनुभव में दिल से निकले शिव बाबा के संग मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में विराजमान हूं
शिव पिता फिर से आया पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
धाम में तुम्हें
सतयुग